सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अकाउंटेंसी की बात करने जा रहे हैं और इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट मॉड्यूल आप लोगों के सिलेबस में होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप एग्जैक्टली है क्या? देखिए, जब कोई बिजनेस आप अकेले करें, इंडिविजुअल फॉर्म में करें, तो हम उसे कहते हैं सोल ट्रेडरशिप। दैट इज, यू आर गोइंग टू बी द सिंगल ओनर ऑफ योर बिजनेस, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट द कैपिटल, मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू विल बी द राइट ओनर ऑफ द होल प्रॉफिट्स, एज वेल एज इन केस इफ ड्यू टू सर्टेन रीजन सम लॉसेज अराइजेज, देन यू आर गोइंग टू बेयर इट। बट विद द ग्रोथ एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ बिजनेस, वी नीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। वी नीड लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल मनी सो दैट वी कैन कैरी ऑन द वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शंस, एंड साइड बाय साइड वी नीड द ह्यूमन असिस्टेंस, दैट इज द मैन पावर। एज फार एज द फाइनेंस इज कंसर्न, यू कैन अप्रोच टू अ बैंक, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स रिलेटिव, और वन आवर द अनदर यू कैन मैनेज द मनी। रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स, यू कैन अपॉइंट द एम्प्लॉइज, यू कैन अपॉइंट द एक्सपर्ट्स, दोज हू आर गोइंग टू असिस्ट यू इन योर बिजनेस इन परफॉर्मिंग वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। बट विल इट रियली फीजिबल? नो। वॉट वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू अपॉइंट समवन एज अ पार्टनर इन अ बिजनेस। और वॉट वी आर गोइंग टू डू, से सिंपली, वेन यू आर गोइंग टू प्ले अ गेम, there are certain games in which you want someone to be there with you. If you say it's a game of chess, if you yourself are going to play a game, you will be the loser, you will be the winner. It's not going to get the things in a right way. I hope that you have played a game of chess on computer. What happened in case computer become your rival partner? If you play a cricket, simply a cricket, someone is going to become a bowler and someone is going to become a batsman. If you travel in a bus, you found that there is going to be a conductor and there is going to be a driver. If you think of a train, there is going to be a guard and there is a driver. So there are various things where we need two persons. And even to run a family, we need a husband and wife. So mother and father, like that way. Similar is the case with a business. To run an ordinary business in a very systematic manner, we need more than one person, and that more than one person, the association of those persons in a very ordinary form, is known as to be a partnership. As far as the preparation of the accounts are concerned, they are almost similar as in case of the sole tradership. There is no change. Similar way we are going to prepare the journal entries, the very same way we are going to post them into the ledger, we are going to prepare our cash book, and we used to maintain different accounts. The only difference is that in case of partnership, we are going to prepare one more account, which is known as a P&L appropriation account, the profit and loss appropriation account. Because here, there is a distribution of profit among the partners. So what proportion is going to be there in which that profit is going to be distributed? Side by side, we are going to prepare their individual capital accounts, because writing of all the things in a balance sheet is not going to be very suitable. It is going to make a balance sheet quite lengthy on the liability side, because partners are going to withdraw the money, they will invest the money, they are going to have the profits, they will have interest on drawings, interest on capital, and many more things. So that's the only change. Otherwise, rest of the things are same as we used to do in case of the sole tradership. So I hope that you are well acquainted with the preparation of the accounts in sole tradership. And what we are there is to explain you how to prepare the profit and loss appropriation and the partner's capital. Now, before we proceed further, we should be very, very clear regarding this definition of the partnership, their features, what are the rules and regulations applicable in case of some disputes arises, and how we are going to prepare the account. So this is going to be the topic for our today's discussion. I hope that as every time I used to say, you have to take your notebooks as well as your self-learning material with you. You should have some pen or pencil with you so that you can note down the points and can take it as a proper PCP class. Later on, as and when you required, you can go through the things, and all our discussions are going to help you in solving your problems which are given to you in your self-learning materials and in different kind of form. In case of any doubt, any query, we are there with you. Please call to us and we are going to sort it out.
जैसे कि अभी पीयूष जी ने बताया आप लोगों को, देखिए बिल्कुल सिंपल वे में कि पार्टनरशिप जो होती है, क्योंकि जो भी उसके डीमेरिट्स थे हमारे सोल प्रोप्रेटरशिप के, वो सारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। एक आदमी अगर बिजनेस करेगा तो बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो प्रॉपर टाइम ना दे पाए उसके पास टाइम, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है और एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो टाइम ज्यादा दे पाते हैं, कैपिटल ज्यादा होती है, तो बहुत सारे एडवांटेज जो होती है वो फर्म एंजॉय करती है। अब पार्टनरशिप फर्म की हम बात आज कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म जो है आपका वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, एक 1932 में ये
हाँ,
एस्टेब्लिश
यहाँ
हुआ।
मैं आपको अरविंद जी रोकना चाहूंगा। बच्चे यह हमारे पास सर ये कई बारी बात आती है, बच्चे पूछते हैं ये एक्ट क्या है। कंपनीज की जब हम बात करते हैं तब हम कुछ दूसरा एक्ट कहते हैं, आई थिंक दैट इज 1956 की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, दैट इज 1912 की बात कर रहे हैं। तो ये व्हाट पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आप इनको थोड़ा सा बताइए कि एग्जैक्टली क्या है ये।
हाँ जी, ये पार्टनरशिप एक्ट है एग्जैक्टली, कि जो अब हमने बच भी हमने बात की कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, तो हर चीज के लिए एक एक्ट बना हुआ, और इसी टाइप से पार्टनरशिप के लिए एक्ट बना हुआ है, वो 1932 में एस्टेब्लिश हुआ था। और कुछ बातें उसमें ऐसी हैं कि अगर आप आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो कुछ जनरल रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते ही हैं पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से।
बच्चों यहाँ मैं और एक आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब हम सोल टेनरशिप की बात करते थे तो कोई एक्ट नहीं था। सर ने भी बताया, डॉक्टर अरविंद ने आपको बताया कि देर इज गोइंग टू बी स्पेशल एक्ट विच इज मेड इन 1932 रिलेटेड टू द पार्टनरशिप, बट फॉर सोल टेनरशिप देर इज नो सच काइंड ऑफ एक्ट। इट सिंपली मीन दैट एनी वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, कैन क्लोज इट्स एक्टिविटी एज पर इट्स ओन नीड्स एंड चॉइस। वॉट द बेस्ट यू आर सपोज टू डू, यू आर गोइंग टू टेक द परमिशन फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट बिफोर यू स्टार्ट अप विद द बिजनेस। That is, the permission is required for a place. Maybe in case the business is of polluting nature, then you have to take a certificate from a no pollution, from the pollution department, that business is going to have these kind of things. And in various cases, you have to get yourself registered with the sales tax authorities and so on. Otherwise, there is no such kind of act which is going to govern your business. As far as partnership is concerned, there is an act which is formed by the government in 1932, under which we are going to गवान दिस।
अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेशन की बात आएगी आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम किसी चीज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन एटलीस्ट आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या दी है वो पता होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन हु आर एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
तो सर जैसे ये डेफिनेशन आपने बताई, ये तो एक हमारी बिल्कुल सेल्फ लर्निंग मटेरियल में बच्चों आपको दे ही रखी है डेफिनेशन। मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके आप फीचर्स भी बताएं जो इन डेफिनेशन से ही निकल कर आए, ताकि हम बच्चों को उस चीज के बारे में अच्छी तरह समझा सकें।
बिल्कुल, क्योंकि अगर जब तक आपको फीचर्स के बारे में, फीचर्स कहां से आते हैं, आप अगर डेफिनेशन आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी तो उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजीली हमें समझ में आ जाते हैं। अब इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक, जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है दैट इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो स्टार्ट होती है आपकी वो एग्रीमेंट से ही स्टार्ट होती है, इसीलिए हम ऐसे जो है बोलते हैं कि पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो एग्रीमेंट होता है। ये आप ओरल कर सकते हैं या रिटन कर सकते हैं। ओरल भी ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है, और अगर रिटन एग्रीमेंट है वो भी वैलिड होता है, लेकिन बेनिफिशियल होता है कि अगर उसमें रिटन एग्रीमेंट किया जाए। इसके साथ साथ जो है ये पार्टनरशिप के बीच में रिलेशंस बताता है कि हाँ किस टाइप से रिलेशंस रहेंगे, कैसे हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग होती हैं आपकी एग्रीमेंट से। और रिटन एग्रीमेंट को है हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, जिसे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज एग्रीमेंट
जी। अब बच्चों दूसरा इसमें जो चीज आती है वो आती है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। डॉक्टर अरविंद ने आपको शुरू में ही बताया कि देर इज गोइंग टू बी एन एक्ट विच इज 1932, एंड ईच एंड एवरी बिजनेस विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप बिजनेस इज गोइंग टू बी गवर्न बाय दैट वेरी एक्ट ओनली। देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी बिजनेस। अब यहां पर मैं एक वर्ड का बार बार यूज कर रहा हूं, बिजनेस। इट मीन्स पार्टनरशिप में एक तीसरा फीचर निकल कर आता है कि पार्टनरशिप तभी पॉसिबल है जब वो कोई लॉफुल बिजनेस कंडक्ट करें। इफ इट इज एन इलीगल बिजनेस तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो यहां जो बात आ रही है, या आपने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया चलिए, और उसके बाद आप कोई बिजनेस नहीं करते तो भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। बिजनेस क्या है, आप बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे, दैट इज टू कीप आवरसेल्फ बिजी और अब इसमें कई सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के होते हैं वो सब यहाँ एप्लीकेबल होंगे। तो डॉक्टर अरविंद ने जैसा बताया कि एक एग्रीमेंट होगा, सेकेंडली इट इज गोइंग टू बी गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड थर्डली देयर इज गोइंग टू बी लॉफुल लीगल बिजनेस अंडर विच द पार्टनरशिप एक्ट इज गोइंग टू वर्क और द डिफरेंट पार्टनर्स आर गोइंग टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज।
बिल्कुल। इसके बाद जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसकी, दैट इज नंबर ऑफ पर्संस। नंबर ऑफ पर्संस भी बिल्कुल क्लियर है कि कम से कम यानी कि एटलीस्ट टू पर्संस आर रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टनरशिप। कम से कम दो लोग चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम की भी लिमिट है इसमें। अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो 10 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, और बैंकिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 पार्टनर्स इस एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं।
जी, तो बच्चों नंबर्स का बड़ा ध्यान रखना है आपने। एक इंडिविजुअल सिंगल पर्सन तो पार्टनर हो नहीं सकता, दैट इज अ सोल ट्रेडर। सो मिनिमम फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस देयर आर टू पर्सन। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भाई कितने लोग बिजनेस मिलकर करेंगे। तो इसके अंदर एक बड़ा खास फीचर आता है, दैट इज ऑल द पार्टनर्स कैन एक्ट फॉर वन एंड वन कैन एक्ट फॉर ऑल। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आप चार लोग मिलकर एक बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। अब अगर कोई एक पर्सन कोई डिसीजन देता है, वट एवर इट मे बी, तो दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन रेस्ट ऑफ द थ्री ऑल्सो। दे कैन नॉट डिनाई कि नहीं जी हमने तो डिसीजन लिया ही नहीं या हमारा तो कंसर्न ही नहीं है। नो, इट्स अ कंबाइंड बिजनेस, इट्स अ ज्वाइंट बिजनेस, सो ऑल ऑफ देम हैव टू बेयर इट। एंड इन केस इफ रेस्ट ऑफ द थ्री अब किसी दूसरे ओकेशन पर बाकी तीनों ने कोई डिसीजन ले लिया इन द एब्सेंस ऑफ वन, तो वो उस अकेले को मानना होगा। इसका मतलब यहां पर होता है कि वन इज गोइंग टू एक्ट फॉर ऑल एंड ऑल आर गोइंग टू एक्ट फॉर वन।
बिल्कुल।
इसको हम एक म्यूचुअल एजेंसी टाइप भी इसको एक वर्ड सिंगल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं,
क्योंकि एजेंट माने जाते हैं पार्टनर।
जी
बिल्कुल। अच्छा पीयूष जी, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है इसमें, शेयरिंग प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में वो किस टाइप से बांटा जाएगा? तो इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि दो या दो से अधिक लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो जो भी एग्रीमेंट कर लें आपस में, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी जो पार्टनरशिप की होती है वो एग्रीमेंट से होती है, और एग्रीमेंट अगर 1:3, 1:10 जो भी रेशियो बना लेते हैं, एग्रीड हो जाते हैं, उस रेशियो में वो पार्टनर्स प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट के लिए, तो फिर वो जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा बिजनेस का, वो इक्वली डिवाइड होगा।
बिल्कुल। यहाँ और एक खास चीज बच्चों ये है कि प्रॉफिट शेयर करना उनके लिए मस्ट है। अगर आप अपने आप को पार्टनर किसी बिजनेस का कहते हैं तो आपको प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा। यू कैन डिनाई टू शेयर अ लॉस, यू कैन से नो नो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट एज पर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, बट यू कैन नॉट डिनाई टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इफ इट इज देयर एज पर द एग्रीमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स विच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ। एंड आप एक एक वर्ड अगर डेफिनेशन का जो आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में गिवन है उसी के बेसिस पर देखें, तो ये सब फीचर्स उसी चीज से निकलकर हमारे पास आए हैं।
एक,
अब, जी जी बताइए।
एक अनलिमिटेड लायबिलिटी का फीचर और होता
है। हाँ हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल। क्योंकि बिजनेस हमें लगता है कि यहाँ जो लायबिलिटी है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे सोल प्रोप्रेटरशिप में तो पता ही होगा आप लोगों की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो ये पार्टनरशिप जो फर्म होती है इसमें भी लायबिलिटी जो है वो पूरी की पूरी अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर इन केस आपको लॉस हो जाता है, लॉस होने के बाद आप बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाती है, यानी कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बिजनेस अब आगे हम नहीं कर पाएंगे और आप सोचते हैं चलिए बिजनेस को हम खत्म कर देते हैं, सारी एसेट्स आप बेचते हैं, उसके बाद लायबिलिटीज का पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और लायबिलिटी का पेमेंट करने में आपकी बिजनेस की एसेट सारी खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद जो आपकी पर्सनल एसेट्स हैं वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो भी सेल होके और उनका लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। इसीलिए हम इसमें बोलते हैं कि इसमें जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन अगर कोई माइनर पार्टनर आपके साथ है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो उसके लिए वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज सेल नहीं करेगा।
जी, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग आप समझ गए होंगे, और आपको बड़ा ध्यान रखना है कि जब कभी आप पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर हों तो लायबिलिटीज के मींस या जो जो लायबिलिटीज आप बेयर करें वो बड़े लिमिटेड हों, विद इन योर अप्रोच, विद इन योर पेमेंट कैपेसिटी। इन केस इफ दे एक्सीड देन यू हैव टू सेल ऑफ योर पर्सनल एसेट्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिजनेस लायबिलिटीज। डॉक्टर अरविंद ने शुरू में आपको एक बात बताई थी एग्रीमेंट के बारे में, और कहा था कि भाई ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अब ओरल और रिटन से यहाँ क्या कंसर्न है? देखिए, पहली बात तो आपको एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इज जस्ट एंड बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पर्संस। जैसे कि आप एक एग्रीमेंट करें, पार्टनरशिप की हम बात करें, आप दो फ्रेंड्स मिलकर बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपने ये तो डिसाइड करोगे भाई हमारे बिजनेस का नाम क्या होगा, हम बिजनेस किस तरीके का करेंगे, बिजनेस कहाँ पर सिचुएटेड होगा, हमारे बीच में प्रॉफिट्स किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इन केस हमारे बीच अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो हमें उसे कैसे सॉर्ट आउट करना होगा, हम लोग कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, किसी की क्या पावर्स और क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब बातें अगर आप आपस में डिस्कस करके ही कुछ कर लें तो वो आपका एक वर्बल एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट हो गया। और यही बातें अगर आप सब एक पेपर पर लिख लें जिसकी कॉपी आप दोनों के पास रहे, सो दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट यू कैन क्लैरिफाई द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दैट पेपर, वो आपका एक रिटन एग्रीमेंट हो गया। अब ये जो एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसी रिटन एग्रीमेंट को हम पेपर पर अगर ले लें इन ब्लैक एंड व्हाइट तो वी कॉल इट एज अ पार्टनरशिप डीड। इन केस जो हम बात करने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, दैट सिंपली अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कंडक्ट देयर बिजनेस एक्टिविटीज। वैसे तो कुछ मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड में ये होती हैं, फिर भी इन जनरल हम इनके अलावा और क्या पॉइंट रख सकते हैं। मैं डॉक्टर अरविंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो और इसमें बताएं कि वो क्या और लिखें कि वो एग्जैक्ट पार्टनरशिप डीड बन जाए।
बिल्कुल, इसे जो ये चीजें होती है नहीं, हम कंटेंट बोलते हैं पार्टनरशिप डीड के, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि पीयूष जी ने अगर बताया है आपको एग्रीमेंट के साथ, अब वो ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो लगभग सारी चीजें आ गई, लेकिन सिस्टमेटिक वे में अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो आप उसमें नाम क्या फर्म का है वो डिसाइड किया होगा आपने कि फर्म को एबीसी लिमिटेड या जो भी कंपनी का नाम, आप फर्म का नाम जो भी रखना चाहें पार्टनरशिप फर्म का, वो नाम आपको लिखित में होना चाहिए आपके पास, और आपका कहाँ पे आपका उसका हेड ऑफिस का जो एड्रेस होगा, मेन जो पार्टनरशिप फर्म है उसका एड्रेस कहाँ पे होगा, वो वाला एड्रेस लिखा जाता है इसमें। सेकंड आता है इसमें नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, आप किस टाइप का, नेचर क्या होगा आपका, आप ट्रेडिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किस टाइप से बिजनेस करेंगे और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे बिजनेस के, वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। थर्ड नंबर पे नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, पार्टनर जो होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे रहते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, वो सारी चीजें भी रिटर्न में होती हैं। पार्टनरशिप डीड का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है फोर्थ, जिसे हम बोलते हैं रेशियो इन विच प्रॉफिट्स इज टू बी शेयर्ड, जो प्रॉफिट है पार्टनरशिप फर्म के वो किस रेशियो में बांटे जाएंगे। जैसे कि बताया कि रिटर्न एग्रीमेंट है, आप कुछ भी रिटर्न में कर सकते हैं, किस रेशियो में बांटना है, मैंने बताया 10:1 का रेशियो हो, 4:1 का रेशियो हो, किसी भी रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर इस रेशियो के बारे में यहाँ पे साइलेंट होता है तब इक्वल पार्टनर्स माने जाते हैं और उनका जो रेशियो होता है वो सारा का सारा इक्वल होता है। इसके बाद जो अदर जो वो होता है फिफ्थ, जिसे हम बोलते हैं कंटेंट, वो होता है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ईच पार्टनर। अब जो भी पार्टनर बिजनेस में लगे हुए हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो किस उनका कैपिटल में कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, तो कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इसमें लिखना होता है कि हाँ एक पार्टनर 1 लाख लगा रहा है, दूसरा 2 लाख लगा रहा है, कितना लगाया, क्योंकि सारी की सारी बातें आपको स्टार्टिंग में ही लिखनी होती हैं और रिटर्न होती हैं ये। तो सपोज करिए कि 4 पार्टनर्स ने सोचा कि हम बिजनेस करेंगे, तो चारों पार्टनर्स कितने कितने रुपए बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगाएंगे, वो सारी की सारी कैपिटल के रूप में यहाँ पे लिखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड। अब आपको पता ही, अब मैं कह रहा हूं कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगाएगा, कोई पार्टनर कम कैपिटल लगाएगा, तो अब यहां पर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हम करते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने ज्यादा पैसा लगा दिया वो नेचुरली चाहेगा कि मुझे ज्यादा मिले, प्रॉफिट का एग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट किया है आप लोगों ने, पार्टनर्स ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया जाएगा, अगर ये पहले से तय होगा तो दिया जाता है और नहीं होता है तो नहीं दिया जाता है। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना कैपिटल पे पेमेंट होगा वो भी लिखा जाना चाहिए, कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में जितना भी इंटरेस्ट चाहे उतना इंटरेस्ट इसमें लिखा जा सकता है। इसके बाद आता है सैलरी और एनी अदर रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स इफ अलाउड। इफ अलाउड का मतलब अगर आप, क्योंकि आप पार्टनर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट में तो डिस्ट्रीब्यूशन है ही, प्रॉफिट में तो पीयूष जी ने बताया आपको कि प्रॉफिट तो आपको बांटना ही होगा, प्रॉफिट में तो आपको शेयर लेना ही होगा। लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लें कि हाँ कोई पार्टनर्स को सैलरी भी दी जाएगी, क्योंकि वो भी आदमी काम कर रहा है, पैसा लगा दिया तो रिटर्न के रूप में तो प्रॉफिट मिल गया, अब पैसा आप अगर बैंक में लगाते तो रिटर्न तो मिलता ही आपको, तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि वो तो रिटर्न प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो हमें जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसका रिटर्न है, जो हम काम कर रहे हैं उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, तो उसके लिए अगर आप सैलरी डिसाइड करते हैं तो वो सैलरी भी आपको दी जा सकती है। तो अगर आपने इसमें लिखा हुआ है कि हाँ सैलरी मिलेगी तो सैलरी भी दी जाएगी और कितनी सैलरी दी जाएगी कोई अगर पार्टनर काम करता है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स के नेम एड्रेस भी हैं, तो वो सैलरी जो भी डिसाइडेड होगी वो वाली अमाउंट सैलरी का दिया जाएगा। इसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस बाय अ पार्टनर्स टू द फर्म। देखिए बिजनेस सारा का सारा ही मैंने बताया कि अनसर्टेन होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसी टाइप से कभी कभी हमें लोन की जरूरत भी पड़ सकती है, तो लोन की जरूरत पड़ेगी अगर आप बाहर से लोन लेते हैं, तो बाहर से लोन लेंगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो तो उन्हें दिया ही जाएगा। इनकेस जो पार्टनर आपका लोन प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप फर्म को, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये अगर हम पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख लेते हैं कि हाँ इतना 10% 20% 4% 6% जो भी ये एग्रीमेंट है आपका, आप लिख सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर फर्म को जरूरत पड़ने पर लोन देता है तो 10% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अब कभी भी अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो 10% का इंटरेस्ट होगा। कहने का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस जो भी डिसाइड कर लेंगे पार्टनर्स, वो वाला इंटरेस्ट दिया जाता है। ये आपका 8th कंटेंट होता है पार्टनरशिप डीड का। इसके बाद नेक्स्ट आता है ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अब ड्रॉइंग्स पहले आपको बताया जा चुका है पिछले पीसीपी क्लासेस में कि ड्रॉइंग्स जब आदमी को पैसे की जरूरत होती है, बिजनेस कर रहे हैं आप और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे उसमें से पैसा, बिजनेस में से पैसा ड्रॉ करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये चीज कहलाती है ड्रॉइंग। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, सेम वही चीज होती है कि जब आप ड्रॉ कर रहे हैं पैसा तो आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं। तो बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो अगर पार्टनर्स चाहें, इफ एनी की बात हो रही है यहां पर, कि अगर पार्टनर्स चाहें तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा पैसा ना निकले, क्योंकि जितना भी पैसा कोई पार्टनर निकालेगा उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज भी हो सकती है कि हाँ पार्टनर्स पहले से ही कर लें कि अगर कोई पार्टनर पैसे ड्रॉ करता है तो उसके ऊपर उसे ब्याज का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। इसी टाइप से मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड रेमुनरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, That is on the admission, retirement or death of a partner. अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है गुडविल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है गुडविल। गुडविल यानी कि फर्म की जो ख्याति है जिसे हम बोलते हैं वो गुडविल होती है। अब गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, तो ये एसेट ऐसी होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती। अब ये एसेट हमें दिखाई नहीं दे रही है तो इसका हमें वैल्यूएशन करना होता है, और जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, और ये रिवैल्यूएशन की जरूरत होती है हमारी वो सारी की सारी एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम। तो किस टाइप से हम वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि गुडविल के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, और ऐसे ही एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन जो करना होगा हमें, वो कैसे कैसे रिवैल्यूएशन होगा और कब कब जरूरत होगी। तो नेचुरली जो तीन टाइम होते हैं उसमें हम पार्टनरशिप का रिवैल्यूएशन, मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे और डेथ के टाइम पे। तो ये सारी चीजें भी पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख ली जाती है। इसी टाइप से जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो फिर उनका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, ये भी चीज पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख ली जाती है।
यहाँ मैं सर आपको रोककर एक बात बच्चों को बताना चाहूंगा। बच्चों मान लीजिए हमारे पास एग्रीमेंट है ही नहीं, या वो उड़ल है, एग्रीमेंट ना होना तो संभव नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के बनी नहीं सकती। सबसे पहला फीचर ही हमारा ये है, तो एग्रीमेंट तो डेफिनेटली हमारे बीच में हुआ है। लेकिन अगर वो वर्बल एग्रीमेंट था एंड वी हैव फॉरगॉटन सम पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्प्यूट्स अराइजेस, तब उन केसेस में क्या क्या होगा, तो मैं यहाँ एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहला जो डिस्प्यूट होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, वो होता है प्रॉफिट्स के ऊपर। हम लोग कहते हैं कि भाई वी हैव इन्वेस्टेड मोर कैपिटल और वी हैव डिवोटेड मोर टाइम इन अ बिजनेस, तो वी शुड गेट मोर शेयर। नाउ इन केस इफ नो सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज देयर अमंग द पार्टनर्स ऑन द प्रॉफिट, or there was an agreement in which we don't have any proof, then the profits or the losses, whatever it may be, they all are going to be shared equally among all the partners. The second dispute, जो दूसरा झगड़ा हमारा होता है partnership में normally, जो देखा गया है वो होता है interest on capital के ऊपर। आपने 1,00,000 रुपए लगाए, दूसरे आदमी ने 5,00,000 रुपए business में लगाए, तो definitely the one who has invested more capital is going to have some more things। लेकिन अब वो कहता है जी हमें कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, अगर हम ये पैसा बिजनेस में ना लगाते, कहीं बैंक में जमा करते या कहीं और कुछ इन्वेस्ट करते, तो वी आर गोइंग टू गेट सम रिटर्न ऑन इट इन वे बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। तो पार्टनरशिप में रूल क्या है यहाँ पर, कि जो झगड़ा है वो किस बात का था, इंटरेस्ट का। रूल ये कह रहा है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना अगर आपके बीच में कोई पार्टनरशिप इंटरेस्ट के ऊपर एग्रीमेंट कैपिटल के ऊपर नहीं है तो, यानी कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देने की बात तय है तो आप बाकायदा देंगे एज पर द टर्म्स एंड एग्रीमेंट कंडीशंस। इन केस इफ देयर इज नो सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो कुछ देंगे ही नहीं, किसी को कुछ नहीं देना, झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। तीसरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। अब अगर पार्टनर्स ने पैसे विदड्रॉ करे तो मे बी द अदर्स आर गोइंग टू हैव द ऑब्जेक्शन। वो कहते हैं भाई हमने बिजनेस में पैसा इसलिए थोड़ी लगवाया है कि ये लोग निकाल लें, बट टू कैरी ऑन देयर वेरियस काइंड्स ऑफ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट दे मे हैव विदड्रॉन सम मनी। तो इन केस अगर बिजनेस में से पैसा निकाला गया किसी भी पर्पसेस के लिए, रीजंस के लिए, तो ड्रॉइंग्स पर अगर इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट है तो वेल हम अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे, नहीं तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास पार्टनर्स के बीच में झगड़ा आता है वो नॉर्मली आता है कि हम किसी नए पार्टनर को अगर बिजनेस में एडमिट करना चाहते हैं तो। अब जब तक कि सारे पार्टनर्स एग्री ना करें हम किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? देखिए एग्रीमेंट आप लोगों के बीच में है, आप अपने बिजनेस को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो कोई भी एक अकेला चाहे कि भाई आई वुड लाइक टू मेक समवन एज अ पार्टनर इन माय प्लेस और या वो हमारे साथ जुड़ जाए, आप सभी एग्री कर जाएं वेल एंड गुड। इन केस इफ ड्यू टू सर्टेन रीजंस यू वोंट एग्री ऑन दिस टर्म एंड कंडीशन देन नो वन इज गोइंग टू बी एडमिटेड। इसके बाद आता है झगड़े का कारण जो होता है सैलरी और कमीशन के ऊपर कि भाई मैंने बिजनेस में ज्यादा टाइम डिवोट करा और मुझे इस पर कुछ सैलरी मिलनी चाहिए थी। तो इन केस अगर एग्रीमेंट है वेल हम अकॉर्डिंगली देंगे, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम उस पर कोई सैलरी या कमीशन आपको नहीं देंगे। कभी कभी बिजनेस को जरूरत पड़ने पर पार्टनर से लोन भी लेना पड़ता है। आपने शुरू में ही पढ़ा होगा कि बिजनेस इज गोइंग टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस अलग है और उसमें काम करने वाले पार्टनर्स जो हैं उनकी एंटिटी बिल्कुल अलग है। तो इन केस इफ द बिजनेस नीड्स द मनी ड्यू टू सर्टेन रीजंस एंड द पार्टनर्स हैज प्रोवाइडेड अ लोन, तो नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन सीन कि लोन तो दे दिया बिजनेस को जरूरत पड़ने पर और बाद में वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमें इंटरेस्ट कुछ मार्केट रेट के हिसाब से मिले। तो इन केस इफ देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट वेल फाइन विल पे अकॉर्डिंगली, इफ नो सच काइंड ऑफ थिंग इज देयर देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी पेड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब कभी भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। अब शुरू में आपको बताया गया था कि पार्टनर्स के बीच में एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर यहाँ हम पहले भी बच्चों के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हमारे पास फाइनल अकाउंट है जिसमें हम खाली एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे। मैंने खुद बच्चों को बताया कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिन्हें हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या ये बहुत जरूरी है बनाना किसी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए? अगर आप कहते हैं हाँ तो फिर कैसे बनाया जाता है ये बच्चों को थोड़ा हम बताएं।
बिल्कुल, पार्टनर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे हम सोल प्रोप्रिएटरशिप की थोड़ी सी हमने बात की थी तो उसमें तो एक ही आदमी बिजनेस का मालिक होता है, एक ही ओनर होता है, और जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसका वो अकेला मालिक होगा, वही उसे एंजॉय करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की तो पार्टनरशिप फर्म में हमने बताया कम से कम दो लोग हमें इसमें चाहिए होते हैं और मैक्सिमम लिमिट भी हमने बताई थी। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अब क्योंकि दो लोग हैं तो उनमें प्रॉफिट किस टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मेट है हमारे पास। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी आपका नेट प्रॉफिट आता है पहले हम सारा का सारा नेट प्रॉफिट वो क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, यानी कि जो इसके कॉलम्स होते हैं अगर आप कॉलम्स देखेंगे तो कॉलम बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से ही होते हैं, एक पर्टिकुलर्स का, एक अमाउंट का, और फिर क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम होता है।
यानी कि वो तीन अकाउंट जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है वो तो आपको देखो बनाने बनाने।
बिल्कुल,
मैं यहाँ थोड़ा गलत कह रहा हूँ, बैलेंस शीट अपने आप में अकाउंट नहीं है, तो बट रूटीन वे में अगर हम बात करें वो तीन चीजें तो आपको देखिए बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और बैलेंस शीट से पहले हम एक और अलग तरीके का अकाउंट बना रहे हैं जिसकी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से डॉक्टर अरविंद आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आया उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आप ब्रॉट डाउन करेंगे।
करेंगे तो सबसे पहली चीज तो क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप क्रेडिट साइड में लेके जाइए, इन केस लॉस हो गया तो वो आप डेबिट साइड में लेके जाए, यानी कि बेसिक जो चीजें वहां पर थी वो वाली चीजें तो एज इट इज हम फॉलो करेंगे ही। अब हमने प्रॉफिट एक बार उतार लिया क्रेडिट साइड में, इसके बाद अब जो पार्टनर्स ने, अगर पार्टनरशिप डीड में ये पहले से ही हमने लिखा हुआ है कि हाँ जो पार्टनर्स हैं उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट होगा, तो जो भी उन्होंने कैपिटल लगाई है जिस भी रेट पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना है वो सारी की सारी चीजें उस रेट से निकाल के हम लिख लेते हैं कि ए को इतना देना है, बी को इतना है, या सी को इतना, जो भी पार्टनर्स के नेम है उन्हें हम वो चीज दे देते हैं। इसी टाइप से अगर एग्रीमेंट में ये भी है, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये भी है कि ड्राइंग्स पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वो वाली चीज क्रेडिट साइड में, क्योंकि बिजनेस के लिए ये इनकम हो जाएगी, ये चीज क्रेडिट साइड में हम लिख लेंगे कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने इतने पैसे निकाले, इतने रुपए इंटरेस्ट हो गया इनका, इतने रुपए इंटरेस्ट हो गया। फिर उस जो भी आपका टोटल होता है उसमें से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वो वाला प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड में जो भी आपने रेशियो बनाया हुआ है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जैसा कि पीयूष जी ने बताया कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इक्वल रेशियो में ये प्रॉफिट बांट दिया जाएगा।
बच्चों यहाँ एक चीज और आती है, सर ने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। देखिए बिजनेस में दो तरह की सैलरी आपको मिलेगी अगर आप कभी इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, एक ऑर्डिनरी सैलरी और एक पार्टनर सैलरी। अ सिंपल सैलरी इज गोइंग टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस इफ इट इज अ सैलरी रिलेटेड टू द पार्टनर्स, एनी ऑफ द पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट, then that specific salary will be shown in P&L appropriation account. Same is the case with the commission. If there are certain commissions which are supposed to be paid to the partners, they are also going to be shown on the debit side of the profit and loss appropriation account. In some special cases, even the manager's commission is also going to be shown under the P&L appropriation account if it is on some appropriate basis, on some distributed basis. Then we finalize and whatever be the profit is going to be there, or the losses are there that are going to be shared by the partners in their respective ratios. अब अगर आप
तो इसमें हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी पार्टनर्स को जो भी चीज मिलनी है, चाहे सैलरी हो चाहे वो कमीशन हो, वो सारी की सारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
बिल्कुल
दिखाई जाएगी।
पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो उनका, चाहे उनका प्रॉफिट हो, वो आपको P&L एप्रोप्रिएशन में लेना है। इसका पर्पज ये है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। बच्चों एक बार हमने ये अकाउंट बना लिया, अब और एक अकाउंट बनाने की जरूरत आती है विच इज नोन एज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं। देखिए जब एक इंडिविजुअल बिजनेस में होता है तो नॉर्मली उसके साथ दो ही बातें एक सिंपल वे में आती हैं, उसका प्रॉफिट या उसका लॉस या उसकी ड्रॉइंग्स। ये तीन चीजें बैलेंस शीट में लिखना लायबिलिटीज में बड़ा आसान है। आप कैपिटल लिखिए, ड्रॉइंग से माइनस करिए, प्रॉफिट है प्लस करिए, टोटल बाहर दिखा दीजिए। अब यहाँ हमारे पास एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उनकी ड्रॉइंग्स है, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उनकी इंडिविजुअल सैलरीज है। ये सब चीजें लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट में शो करना एप्रोप्रिएट नहीं होता, इट बिकम्स टू बल्की एंड लेंथी। सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी आर प्रिपेयरिंग वन सेपरेट अकाउंट नोन एज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हैं तो ये दो तरीके से बनाया जाता है। वन इज नोन एज अ फिक्स कैपिटल, जहां पर पार्टनर ये प्रिज्यूम करें कि भाई हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। एंड द सेकेंड वन इज नोन एज टू बी द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस और डिफरेंट एंट्रीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल की, कि वो फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे होगा और उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये आपके साथ हमें डिस्कस करना है। देखिए जब हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल के अंदर ही दो तरीके के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, वन इज नोन एज अ कैपिटल अकाउंट, सेकंड नोन एज अ करंट अकाउंट।
तो जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें आपको सिर्फ कैपिटल का, उनका जो पार्टनर्स का कैपिटल है उनका बैलेंस लिखना है। और क्योंकि अभी हमने पहले ही आपको बताया पीयूष जी ने कि ये कैपिटल का जो बैलेंस है, क्योंकि फिक्स्ड नाम ही इसमें क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहते हैं कि हम इस कैपिटल के बैलेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम, यानी कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था जब बिजनेस एंड होगा जो आपकी कैपिटल थी वो एज इट इज ही रहेगी। तो इसमें तो कोई खास चीज आती नहीं है, पहले कैपिटल का बैलेंस आता है और उसके बाद अगर आपने कैपिटल लगाई है कुछ एक्स्ट्रा, कभी जरूरत पड़ गई बिजनेस में और आपने पैसे लगा दिए तो वो वाली अमाउंट आ जाएगी इसमें, क्रेडिट साइड में एड हो जाएगी इसमें। और अगर आपने इसमें क्या कहते हैं कुछ कैपिटल विदड्रॉ कर ली है परमानेंटली तो वो वाली कैपिटल डेबिट साइड में चली जाएगी और क्लोजिंग बैलेंस इसमें हम दिखा देते हैं।
और खास चीज इसमें यह है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा इसमें जो कैपिटल वाला पोर्शन है इट कैन नेवर बी डेबिट, माइनस में नहीं जा सकता, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव बैलेंस।
बिल्कुल। इसके
अब जो चेंजेस होते हैं बिजनेस में, देखिए ये बड़ा प्रैक्टिकल है कि बिजनेस में कैपिटल सेम रह ही नहीं सकती। मैंने शुरू में एग्जांपल दिया आपके कि समवन हैज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, द अदर हैज इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस दैट मनी विल रिमेन सेम? देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर गोइंग टू चेंज दैट बैलेंस। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर कैपिटल, लॉस हुआ तो इट विल डिक्रीज योर कैपिटल, समटाइम यू विदड्रॉ द मनी फॉर योर पर्सनल यूज, सो ड्रॉइंग हो गया उससे कैपिटल कम हो गई आपकी, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो कैपिटल में एड हुआ वो आपकी कैपिटल बढ़ गई। अब ये सारे चेंजेस हम कैपिटल अकाउंट में ना दिखाकर सेपरेटली एक अलग अकाउंट में शो करते हैं जिसका नाम हम कहते हैं करंट अकाउंट। यानी कि जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू इफेक्ट अवर कैपिटल और आर गोइंग टू मेक द चेंजेस ऑन अवर कैपिटल आर गोइंग टू बी शोन सेपरेटली इन अ सेपरेट अकाउंट नोन एज अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम होता है, व्हाट वी यूज टू डू विदड्रॉ आवर लाइन इन बिटवीन ऑफ द पेपर सेंट्रल लाइन, देन वी प्रिपेयर अ कॉलम फॉर डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन नेम ऑफ द पार्टनर्स एज द नंबर ऑफ पार्टनर्स मे बी 1, 2 और 3। सेम इज द फॉर्मेट ऑन अ डेबिट साइड। वी कैन स्टार्ट दिस अकाउंट ऑन एनी ऑफ द साइड डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। वी मे हैव अ डेबिट बैलेंस और वी मे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। प्रिज्यूमिंग दैट इट इज गोइंग टू हैव अ क्रेडिट बैलेंस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप फ्रॉम द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। Now whatever be the things are there which are going to increase the capital of the partner are going to be written on a credit side. As I have discussed with you again and again ki they are basically the interest on capital. Toh aap usko buy side par likhenge by interest on capital, salary to the partners, by commission to the partners, by profit as per P&L appropriation. On a debit side we used to write the drawings aur agar debit balance hai toh wo debit mein aayega hi aayega, otherwise drawings. Then the interest on drawings and then losses if any. Then we make the total of both the side whichever side is greater and we find out the balances. Here the balances could be the debit balance or the credit balance depending upon the condition. It could be both. But capital account will always have a credit balance. So this way we are going to prepare a fixed capital account in which we are going to show two different account, capital account and current account. On the other hand, if case the partners want that our capital can be fluctuating, वो कहते हैं ना कि हमें क्या फर्क पड़ना है, कैपिटल का एग्जैक्ट बैलेंस हमें पता चलना चाहिए, लाइक इन अ नॉर्मल बैंक अकाउंट कि आपका बैंक में बैलेंस है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो आपकी वैल्यू बढ़ गई, अमाउंट इंक्रीज हो गया, आपने डिपॉजिट करे तो अमाउंट बढ़ गया, आपने पैसे निकाले तो अमाउंट कम हो गया, लाइक दैट वे चेंजेस कुड हैपन एट एनी टाइम एनी मूवमेंट। तो अगर हम इस कैपिटल और करंट को मर्ज कर दें, दोनों को एक साथ कर दें, यानी कि कैपिटल के साथ साथ बाकी वो सब चीजें भी आए जो इस अकाउंट को इफेक्ट करती हैं, तब उस केस में ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा जिसके अंदर दोनों चीजें होंगी।
इसका मतलब इसमें कैपिटल के बैलेंसेज आ जाएंगे पहले
जी।
कैपिटल के बैलेंस के बाद अगर किसी पार्टनर्स को कोई सैलरी मिल रही है वो वाली सैलरी, क्योंकि अभी आपको पीयूष जी ने बताया कि जिन चीजों से इनका बैलेंस बढ़ेगा, जिन चीजों से इन्हें फायदा हो रहा है वो सारी चीजें क्रेडिट साइड में आएंगी और जिन चीजों से इनका बैलेंस कम होगा वो सारी डेबिट साइड में आएंगी। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो जो चीजें हमने बताई थी आपको क्रेडिट साइड वाली, वो सारी आप इसमें ही डाल दीजिए कैपिटल अकाउंट में, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग नेचर से बन जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएंगे, फिर आपका कैपिटल मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, अगर आपको कुछ सैलरी मिल रही है वो सैलरी आएगी, कोई कमीशन मिल रहा है वो कमीशन आ जाएगा, इसके बाद जिन चीजों से कम हो रही है अगर आपने कुछ पैसे ड्रॉ कर लिए या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गई, कोई लॉस हो गया तो डेबिट साइड में आएगा, फिर ये वाला बैलेंस आप दिखाएंगे यहाँ पे कि कितना बैलेंस हो रहा है। तो ये वाला बैलेंस भी नॉर्मली जो है क्रेडिट ही होता है, लेकिन ये किसी कभी कभी अगर ड्राइंग ज्यादा हो गई तो ये डेबिट भी हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड वाले में कैपिटल अकाउंट ऑलवेज वुड बी क्रेडिटेड। तो ये हमने आपको दो चीज डिस्कस की कि किस टाइप से फिक्स्ड कैपिटल कैसे बनता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनता है। अब इसमें एक बात आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, आपको अगर आपने इसे हमारी बात अभी तक ध्यान से सुनी है तो बहुत ही इजीली आप इसमें डिफरेंस पता कर लेंगे कि सबसे पहली चीज तो है नंबर ऑफ अकाउंट्स। नंबर ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट हमने आपको बताया कि एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक आपका करंट अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे हमें कहेंगे कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अगर हमने इस तरीके से खाते रखने तो दो खाते बनते हैं, एक कैपिटल का अकाउंट और एक करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको दो अलग अलग खाते बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उससे हम बैलेंस निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात आती है, फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनाए जाते हैं और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक कैपिटल बनती है। सेकेंड आता है इसमें एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जो है फिक्स्ड कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो सारी की सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट वाले में होंगी, कैपिटल अकाउंट में हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। और जबकि फ्लक्चुएटिंग वाले में सारे के सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं आपके वो कैपिटल अकाउंट में ही किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही आपके पास अकाउंट है, करंट अकाउंट यहां पर है ही नहीं। तीसरा इसमें आता है फिक्स बैलेंस। अगर आप फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो वहां पे नॉर्मली फिक्स रहता है कैपिटल का बैलेंस, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले में क्योंकि सारी चीजें एक ही अकाउंट में आ रही हैं तो बैंक अकाउंट की तरह इसका बैलेंस बदलता रहता है। और इसी टाइप से बैलेंस फोर्थ जो इसमें डिफरेंस आता है दैट इज बैलेंस। और बैलेंस वाले में आप जो है ये कहेंगे कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, और जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट भी आ सकता है बहुत सारे केसेस की वजह से।
जी अब बच्चों आपने एक बार ये समझ लिया कि हमने अकाउंट कैसे बनाने हैं, फॉर्मेट्स हम आपके साथ डिस्कस कर चुके, डिफरेंसेस आपको बता दिए। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आती है पार्टनर्स रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है कि दो अलग अलग तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के। मान लीजिए आपके पास पार्टनरशिप डीड है, उसमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन था कि भाई सो एंड सो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी गिवन, वेल फाइन, विल फॉलो इट, विल ओबे इट। अगर कैपिटल थ्रू आउट द ईयर हमारी सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं आते, तो बहुत अच्छी बात है, जो भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल थी वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी और हम उसके बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर दिखाएंगे। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देयर आर टू पार्टनर्स इन अ बिजनेस ए एंड बी। A has invested 1 lakh rupees in a business while the B has invested 2 lakh rupees in a business. As per the provisions of the partnership deed, we are supposed to pay them 10% interest on capital. So, what do you have to do? 1 lakh rupees pe 10% calculate kariye, which comes out to be 10,000 rupees. Show it on the debit side of your P&L appropriation account. On the other hand, jo B hai, usne kitna invest kara? Usne invest kiya 2 lakh rupees. So on 2 lakh rupees you again calculate 10% per annum, for the whole year it comes out to be again 20,000 and show it on the debit side of the P&L appropriation account. यहां तक बात बहुत सिंपल है और समझ में आ रही है। प्रॉब्लम कब आती है हमारे पास, जब थ्रू आउट द ईयर कैपिटल सेम ना रहे, पार्टनर्स कैपिटल को इन्वेस्ट करें या विथड्रॉ करें। मान लीजिए एक बार भी उन्होंने, एक बड़ा सिंपल तरीका लेते हैं, मिड ऑफ द ईयर में उन्होंने कहा कि हमारी सबकी कैपिटल 2 लाख रुपीज होगी दोनों की, बी के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ए के केस में प्रॉब्लम आएगी, तब आप उसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड होता है वो अप्लाई करें। 1 जनवरी को ए की कैपिटल हमारी 1 लाख रुपीज है, ऑन 1 जुलाई ए हैज ब्रॉट एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू बी विच इज 2 लाख रुपीज। तो अब हमने करना क्या है, ए को 1st 6 months का 1 लाख रुपीज पर 10% का इंटरेस्ट देंगे, विच कम्स आउट टू बी 5,000, और साथ ही साथ ए को अनदर 6 months का 2 लाख रुपीज पर 10% का इंटरेस्ट देंगे, विच कम्स आउट टू बी 10,000। बी के केस में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसका टोटल अमाउंट सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो आप उसको 2 लाख रुपीज पे आसानी से इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो बच्चों जब कभी भी कैपिटल चेंज हो तो आपको एक प्रोडक्ट मेथड यूज करना होता है, जिसके बेसिस पर आप आसानी से ये कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको सिर्फ गैप देखना है, डिफरेंस देखना है कि जो कैपिटल पहले थी वो कितने महीने तक रही, दूसरी कैपिटल है वो कितने महीने तक रही, एंड देन यू कैन वेरी इजीली सॉर्ट इट आउट। 12 मंथ्स का हमारा ईयर होता है तो आप वेरिएशन देख लीजिए कि स्टार्टिंग बिजनेस कब है, एंडिंग बिजनेस कब है, और उसके बेसिस पर मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके सारे इंटरेस्ट को क्लब करके किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर को हम दे देंगे। दूसरी चीज अब हमारे पास आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि जब पार्टनर्स बिजनेस में से पैसे विदड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो सबसे पहले तो हम उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाया क्यों जाता है, बात एक ये आती है, देखिए बिजनेस में हमने पैसे लगाए कैपिटल के लिए ना कि उसको निकालने के लिए, लेकिन पार्टनर्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहते हैं, सो दैट यू कैन कैरी ऑन देयर लिविंग, कैन कैरी मीट आउट देयर डे टू डे एक्सपेंसेस। सो एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो उन पर कि वो ज्यादा पैसा ना निकालें, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं का बिजनेस है, इसलिए एक प्रोविजन बना दिया गया कि भाई इनकेस इफ समवन इज गोइंग टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस एज अ ड्रॉइंग, ही और शी हैज टू पे सम इंटरेस्ट टू द बिजनेस। अब वो कहलाया गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात तो यहां आती है कि अगर एज पर एग्रीमेंट वो कोई फिक्स अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर ऑन अ रेगुलर इंटरवेल्स ऑफ बेसिस, मंथली बेसिस मान लेते हैं कि वो हर महीने 2000 रुपए निकालते हैं, वेल फाइन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के आप इसको निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आप अपनी मर्जी से कोई इंटरेस्ट डिसाइड नहीं करेंगे। बात यह आती है कि वो जो पैसा निकाला गया वो महीने की किस तारीख को निकाला गया। देर आर डिफरेंट प्रोविजंस एंड डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। वन इज दैट द मनी इज विदड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इट कुड बी ऑन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इट कुड बी ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तीन पॉसिबल तरीके हैं। इनकेस If it is withdrawn on the first day of every month, तो आप क्या करें, whatever be the total drawings is there, take the total into rate upon 100, rate आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, into 6.5/12। अब 6.5 अपने आप में एक एवरेज है कि हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाला तो कुल मिलाकर हम उसे 6.5 महीने ही यूज कर पाए। सेकेंड, अगर वो मिडिल ऑफ द मंथ है
तो इसका मतलब अगर बिगनिंग वाला है तो बच्चों को ये याद रखना पड़ेगा कि 6.5 महीने का हमें
एग्जैक्टली लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मनी इज विदड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6.5 मंथ्स। इन केस इफ इट इज मिडल ऑफ द मंथ, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इन केस इट इज एंड ऑफ द मंथ, देन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5.5 मंथ्स। और मानकर चलिए आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, ये बताया ही नहीं कि पैसा कब विदड्रॉ करा गया, तब आप ऑन एन एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट उस पर लगाएंगे।
तो इसका मतलब तो बहुत आसान हो गया देखो बच्चों, क्योंकि अब जैसे कि अब्यूज ने बताया आपको कि अगर आप फर्स्ट डे को विड्रॉ कर रहे हैं, सपोज करिए 1000 रुपीज हर महीने आप विड्रॉ करते हैं और आपने बना रखा है कि ठीक है पहली तारीख को हम 1000 रुपए निकाल लिया करेंगे, तो पूरे थ्रू आउट द ईयर आपका टोटल जो विड्रॉ अमाउंट हो गया दैट इज 12,000, 12,000 रुपए आपने निकाल लिए। अब बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, सपोज करिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 12,000 × 12/100 कर लेंगे आप। अब जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो सिर्फ ये कि कितने महीने का ब्याज चार्ज किया जाएगा उस पार्टनर से। तो अभी पीयूष जी ने आपको बताया कि अगर फर्स्ट डे को आप ड्रॉ करेंगे तो 6.5 महीने का ब्याज निकाला जाएगा, तो आप 6.5/12 कर लें, अमाउंट आ जाएगी आपकी 780 रुपीज। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान है, बस सिर्फ आपको याद होना चाहिए, ये चीज आपको बैठा लेनी होगी अपने दिमाग में कि अगर फर्स्ट डे को अमाउंट ड्रॉ किया जाता है सेम अमाउंट, तो हम उस पर 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और अगर वही अमाउंट जो आप सेम अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं वो लास्ट डेट को करते हैं ड्रॉ, या पहले चलिए मिडिल को करते हैं ड्रॉ, तो मिडिल वाले में आप ये चीज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यही वाला एग्जांपल अगर लें 12,000 × 12% और इंटू 6/12, और अगर लास्ट डे को करते हैं तो वो आपका 5.5 मंथ हो जाएगा
जी।
तो ये बहुत ही आसान हो जाता है अगर ये चीज ध्यान रहती है हमें तो।
एट द मोस्ट और क्या हो सकता है बच्चों इसमें कि आपको मंथली ड्रॉइंग्स के अलावा वो क्वार्टरली ड्रॉइंग्स दे सकते हैं। क्वार्टरली में फिर से हमारे पास तीन पॉसिबल कंडीशंस हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इन केस इफ द मनी हैज बीन विदड्रॉन ऑन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देन व्हाटएवर बी द टोटल ड्रॉइंग्स आर देयर, दैट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 7.5/12, यहाँ पर 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इन केस इफ इट इज मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, दैट इज 6/12। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। इन केस इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट फॉर 4.5 मंथ्स, तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 4.5/12। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। अब मानकर ये चलते हैं कि ड्रॉइंग्स इक्वल नहीं है, यानी कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी बिजनेस में से 1000 रुपए निकालते हैं, कभी 5000 निकालते हैं, कभी 20000 निकालते हैं, तब हम क्या करें। और यहाँ पर हमारे पास पीरियड भी सेम नहीं है। किसी पार्टनर ने बिगनिंग ऑफ द मंथ निकाला, फिर उसी पार्टनर ने लास्ट ऑफ द मंथ निकाली, और उसी पार्टनर ने कभी मिडल ऑफ द मंथ निकाल लिया। यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेकर चले कि पार्टनर जब चाहे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मनी विड्रॉ करते हैं, तब उस केस में इनमें से कोई भी रूल एप्लीकेबल इसमें नहीं होगा जो भी आपके साथ डिस्कस करें हैं। आप उस केस में क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मेथड होता क्या है कि यहाँ पर आपको जो कैपिटल की बात हमने करी थी, एग्जैक्टली सेम चीज आप यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे और आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना होगा, विच मीन्स पहले आप डेट लिखिए कि कब कब मनी विदड्रॉ किया गया, फिर आप अमाउंट लिखिए और फिर मंथ्स की कैलकुलेशन करिए। देखिए आपको सी और डी का ध्यान रखना है। सी वी मेक फ्रॉम अ सर्किल, हाफ सर्किल इज मेड फ्रॉम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप टू बॉटम, डी इज मेड ऑन द राइट हैंड साइड। तो इन केस इफ इट इज फॉर कैपिटल तो आप सी बनाते चलिए, डेट लिखिए और उनके बीच में एक सी बनाते चलिए, फर्स्ट डे ये थी, सेकेंड अमाउंट ये था, थर्ड ये था। और अगर ये ड्रॉइंग्स की बात है तो आप डी बनाते चलेंगे। डी कैसे बनाना है, मान लीजिए फर्स्ट ड्रॉइंग हुई 1 जनवरी को, सेकेंड ड्रॉइंग होती है आपकी 28th of February को, थर्ड ड्रॉइंग आपने करी 1st of April को, तो डी बनाते चलिए 1st April, 1st January से लेके 28th February तक, फिर 28th February से 1st of April तक। अब मंथ्स की कैलकुलेशन करें, प्रोडक्ट निकालें, जो भी अमाउंट विड्रॉ किया इंटू मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, एक अमाउंट आपके पास आ जाएगा, वो इंटू रेट अपॉन 100 × 1/12 अगर आप करें तो आपके पास एक एग्जैक्ट अमाउंट ड्रॉइंग्स का आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वंस यू आर एबल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब आप आसानी से इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रख सकते हैं और उसके बेसिस पर अपने प्रॉफिट्स को, जो कि पार्टनर्स के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। अब वंस यू आर एबल टू प्रिपेयर द पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट्स का आपको फॉर्मेट आपको बता ही दिया है, द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच कम्स अंडर दिस इज अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है कि अगर आपका कैपिटल फिक्स है तो आपको दो तरह के बैलेंसेस बैलेंस शीट में शो करने पड़ेंगे, एक करंट अकाउंट का और एक आपके कैपिटल अकाउंट का। हो सकता है दोनों के पॉजिटिव बैलेंसेज आए, क्रेडिट बैलेंसेज आए, तब तो आप बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पर शो कर देंगे। और अगर किसी अकाउंट का पॉजिटिव और किसी दूसरे का नेगेटिव आया तो अब वो भी आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों की कैपिटल के पॉजिटिव, क्योंकि आपको समझा ही दिया है मैंने कि कैपिटल अकाउंट का नेवर बी नेगेटिव, तो आप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बैलेंसेस शो कर दीजिए। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ए का पॉजिटिव आया, बी का नेगेटिव बैलेंस आया, तो ए का बैलेंस तो आप लायबिलिटी साइड में शो करेंगे और बी का बैलेंस आप एसेट साइड पर शो करेंगे, इनकेस इफ इट इज अ नेगेटिव बैलेंस। अगर आपका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो अकॉर्डिंगली अगर पॉजिटिव बैलेंस आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर, नेगेटिव बैलेंस आते हैं तो राइट हैंड साइड पर।
तो फिक्स कैपिटल में तो आपका बैलेंस कुछ भी हो सकता है, उसमें भी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो आप लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए, और आपका डेबिट बैलेंस है तो आप उसे एसेट साइड में दिखा दीजिए। क्योंकि मेन चीज ये है कि पार्टनर अब ये अगर इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो फ्लक्चुएटिंग वाले में तो कैपिटल का बैलेंस किधर भी आ सकता है और उस साइड को आपको दिखाना पड़ेगा, और फिक्स वाले में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही आएगा और जो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कुछ किसी साइड भी हो सकता है, उस साइड आपको शो करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम ये अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट में लिखने लगते हैं तो नॉर्मली कंडीशन होती है कैपिटल अकाउंट आप क्या करते हैं कि सोचते हैं इस लायबिलिटी में ही आएगा और लायबिलिटी में लिख देते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी चाहिए हमेशा बनाते समय कि ये बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है जो है फ्लक्चुएटिंग वाले केस में।
मैं यहाँ क्या चाहूंगा कि आपसे इसको बहुत अच्छी तरह और समझने के लिए आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, मे बी फादर मदर, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, उनके साथ एक इमेजिनरी रोल प्ले करें रिलेटेड टू द पार्टनरशिप। इमेजिन करिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपस में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करने की बात करिए कि भाई मैंने इतना इन्वेस्ट करा, इन्होंने इतना इन्वेस्ट करा, साल भर में हमें इतना प्रॉफिट हुआ, और उसके बेसिस पर रफ अकाउंट्स बनाकर देखिए, एंड देन यू विल हैव अ रियल प्रैक्टिस कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनानी है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का डिस्कशन रिलेटेड टू द पार्टनरशिप आपको समझ में आया होगा।